पृष्ठ संख्या 256, वर्षा ऋतु। जैसा कि मैंने इस निबंध के प्रारंभ में ही बार बार संकेत किया है, वर्षा ऋतु के लिए निराला के मन में सर्वाधिक आकर्षण है। वर्षा वर्णन में आकर वह इतने तन्मय, स्थिर चित्त, शांत और चुप होते दिखाई देने लगते हैं कि ऋतु प्रार्थना वाली बात सच होने लगती है। उनके अंतर की निश्चलता और संवेगात्मक झीनापन और कलात्मक गरिमा यहाँ अपने उत्कृष्टतम रूप में दिखाई देती है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, वर्षा ऋतु को अनेक सौंदर्यों, भावभूमियों और शब्द लाशियों के माध्यम से जीने, पहचानने और पूजने का प्रयास ही निराला ने किया है, और अंततः सारे सुख उल्लास अथवा समस्त अवसाद के रित जाने पर वर्षा ऋतु के भीतर से उनके अंदर सिर्फ पूजा, पवित्रता और एक संन्यस्त अनुभूति ही शेष रह जाती है। अनुभूति के इस जीनेपन तक पहुंचकर वह एक शिशु की तरह वर्षा की ध्वन्यात्मक अमूर्तता से खेलने लगते हैं। वर्षा की शब्द ध्वनि को अभिव्यक्त करने का प्रयास कालिदास से लेकर विद्यापति, चंडीदास, रविंद्रनाथ और पंत सभी ने किया है, लेकिन उसी अमूर्तता के उस चरम बिंदु तक इनमें से कोई नहीं ले गया है, जहाँ निराला उसे ले जाकर छोड़ देते हैं। पय पीयूष पूर्ण पानी से भरा प्रीति का प्याला है जैसी विवरणात्मकता से चलकर वर्षा कविताओं का अंत वारी वन वन वारी अथवा धिक मनस्व मान गर्जे बदरवा जैसे सूक्ष्म ध्वनि खेलों में जाकर होता है। इस लिहाज से भी निराला अर्थ प्रसार से अर्थ संकोच और फिर अर्थ मौन की यात्रा इन कविताओं में तय करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी वर्षा कविताओं के इस ध्वनि लास्य की तुलना उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के गायन में उठते गिरते स्वरारोहों से की जा सकती है। एक उल्लास युक्त चीख की तरह उठता हुआ अवसाद के मंद्र में तिरोहित होता हुआ स्वर संगम, लेकिन वर्षा के इस धारासार बिंब में निराला ने उसे एक विनाश तत्व के रूप में कम ही देखा है, शायद नहीं के बराबर। वर्षा की अप्रतहित विनाश लीला के प्रति तो वह शायद कभी भी आकर्षित नहीं हुए। वर्षा कविताओं के माध्यम से उनका प्रमुख पृष्ठ संख्या 257, जीवन बिंब, सुख समृद्धि, विकास, प्रेम, उल्लास, उत्फुल्लता और गहन आनंद को प्राप्त करने के रूप में ही व्यक्त हुआ है। विराट मानव समुदाय के सुख, उसकी समृद्धि और आनंद की आकांक्षा ही निराला के वर्षा गीतों का प्रमुख स्वर है। वर्षा का जलद या जीवनदायी रूप ही उन्हें अधिक पसंद है। वह उसे अनंत जीवनदायी शक्ति स्रोत के रूप में चित्रित करते हैं। यह चित्रण कहीं सिर्फ आकांक्षित है, कहीं आशीर्वाद के रूप में व्यक्त हुआ है, कहीं उल्लास और आनंद की चरम अनुभूति के रूप में, कहीं असीम तन्मयता और आत्मतोष के रूप में, कहीं वह बादल को अपने गंभीर घोष से संपूर्ण वन प्रदेश को उद्घोषित कर देने का आवाहन करते हैं, तो कहीं रास्ते पर पड़े अपने जीवन को भर देने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। कहीं वह कवि की तरह ही हृदय में बिजलियों का वज्र छिपा कर गर्जन और तापहरण की नूतन कविता रचने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। इन सारी कविताओं में बादल के श्याम रूप और मंद्र गर्जन से निराला अपनी काव्य रचना को, अपने कवि व्यक्तित्व को एकमेक देखते चलते हैं। वर्षा और उनके अंदर बैठा अनंत स्रोतों वाला कवि अलग अलग नहीं है, एक सार्वभौम जीवनदायी शक्तिमंत कल्याणकारी काव्य रचना की अनंत स्रोत की खलबलाती अभिव्यक्तियाँ ही इन वर्षा कविताओं के माध्यम से चित्रित और मूर्त हुई हैं। बादल गर्जो घीर घीर घूर गगन धारा धर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गर्जो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गर्जो। पृष्ठ संख्या 258, बादल गर्जो या घन गर्जन से भर दो वन या पथ पथ पर मेरा जीवन भर दो, जैसी आकांक्षाओं से चलकर निराला, धाए धारा धर धावन है, और गगन गगन है गान तुम्हारा की पूर्णता तक पहुँचते हैं। यह पूर्णता उपलब्धि और आत्मतोष की भावना दिन दिन बढ़ती गई है, अर्थात उनका काव्यवन दिन दिन समृद्ध और श्यामल होता गया है। यह अनुभूति अंततः उन्हें एक अजीब सी पावनता की अनुभूति तक ले जाती है। सुख समृद्धि आनंद की यह आकांक्षा या तो आगे चलकर आशीर्वचन में प्रतिफलित होती है, या धुलकर निखरने, पवित्र होने, गतिमान होने, वरदान प्राप्त करने और आत्मतृप्ति की गरिमामयी शांति में। वर्षावर्णन में यह शांति, चित्तता, यह संन्यस्त भाव और उपराम पूर्ण गरिमा अद्भुत लगती है, क्योंकि वर्षा मुख्यतः एक घोष गर्जन और शब्दार्थ प्रसार की कविता के लिए ही उपयुक्त ऋतु मानी जाती रही है। या तो उसे एक विनाश लीला की प्रेरणा के रूप में चित्रित किया जाता रहा है, या विरह के शास्त्रीय उद्दीपन के रूप में, या साधारण उत्फुल्ल विवरणात्मक चित्रों के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास भी जहाँ वर्षा को एक दार्शनिक रूपक में बांधने की चेष्टा करते हैं, वह चित्रण चमत्कारपूर्ण, अलंकरण अधिक लगता है। वर्षा चित्रण का कोई नया आयाम उद्घाटित नहीं करता, बल्कि कुछ अंशों में तो वह हास्य उत्पादक भी लगता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवें माया लपिटानी में प्रथम पद एक तथ्यात्मक विवरण है, जिसके माध्यम से एक पिटे पिटाए वेदांत वाक्य को दोहराया गया है। प्रियाहीन डरपत मनमोरा भी कोई नई उद्भावना नहीं है। इसी तरह जायसी का धूम साम धीरे घन धाए, सेत धजा बग पांति दिखाए, या तो एक तथ्यात्मक विवरण है, या आगे चलकर उद्दीपन प्रसंग के रूप में नियोजित हो गया है। या कालिदास जब कहते हैं, बलाहकाश चा शानी शब्द मर्दला सुरेंद्र चापम दधत अस्तणिद गुणम सुतीक्ष्ण धारा पतनाग्र साय कही तुदंति चेता प्रसभम प्रवासिनाम, तो अत्यंत सुनियोजित और उपयुक्त कल्पनाओं के बावजूद यह उद्दीपन वर्णन से अधिक कुछ नहीं रह जाता। कालिदास का वर्षा वर्णन भी सूक्ष्म तथ्यात्मक अन्वेषण तक ही सीमित है। उसे आगे बढ़कर कवि ने उसे मानवीय संवेगों से जोड़ने का जो भी प्रयत्न किया है, वह उद्दीपनात्मक प्रसंगों या प्रभावों तक ही अधिकांशतः सीमित है। कहीं बादलों की घोर कड़क सुनकर चौंकी हुई स्त्रियां हैं, कहीं बरसते हुए बादलों से आनंदित होकर मोर मोरनियों को गले लगा लेते हैं, कहीं उफनती हुई नदियों की उपमा कुलटा स्त्रियों से दी गई है, जो कुल कुल ब्रैकेट में मर्यादा भंग करके पृष्ठ संख्या 259 बाह निकलती हैं। तथ्यात्मक चित्रण में कालिदास का सूक्ष्म अन्वेषण पर्वतों के रंग परिवर्तन से लेकर बंदरों का भागकर कांदराओं में छिपने के सुंदर दृश्यों के चित्रण तक में दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, निराला की वर्षा कविताएं इस पारंपरिकता के कई स्तरों पर अलग हैं। वर्षा उनके लिए जीने को फिर से पाना है, उल्लास, आत्मतोष, सुख और काव्य समृद्धि की पूर्णता का अनुभव है, अपने ही अवसान का बार बार अनुभव करना है। ये वर्षा के सूक्ष्म अन्वेषण तक नहीं जाते। कालिदास की तरह, तुलसीदास की तरह उसे किसी दार्शनिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी नहीं बनाते। वर्षा का अमूर्त स्वर अपनी सारी भीषणता, उदासी या रिमझिम के साथ उनके जीवन में फैलता हुआ है। इतिवृत्त या विवरण की व्यापकता और पारंपरिकता से हटाकर निराला वर्षा ऋतु को अनुभूति के संवेगात्मक संकोच और सघनता में समाहित करके उसे सूक्ष्मतम जीनेपन तक तान देते हैं। यहीं आकर निराला अपनी पूरी काव्य परंपरा से अलग हो जाते हैं। उनके ऋतु चित्रण का यह व्यक्तिगत धरातल परोक्षतः जनमानस के धरातल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मन हमारा मग्न दुख की दूरधरा में हो गया, कुछ न था तब लग्न वहाँ विषम भरा में हो गया। इस तरह परंपरा से अलग होकर निराला मूल्य के धरातल पर अपने पूर्ववर्तियों से, चाहे वह कालिदास हो या जायसी, तुलसीदास हो या रविंद्रनाथ, ऊपर एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु को इस तरह सुख समृद्धि उल्लास आनंद की आकांक्षा के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न उनकी पहली कविता जलद के प्रति ब्रैकेट में अनामिका प्रथम संग्रह ब्रैकेट बंद में ही झलक जाता है। समृद्धि, न्याय, हरियाली और तापहारी, इन सभी रूपों में बादल की अभिव्यक्ति निराला ने दी है। यद्यपि शब्द सौष्ठव के लिहाज से यह कविता बिल्कुल कच्ची और साधारण है, लेकिन संवेदनात्मक परिपक्वता और मूल्य के धरातल पर निराला में कोई कच्चापन नहीं दिखाई देता। कविता की शुरुआत ही जलद नहीं जीवनद से होती है, उसे जीवन अमृत जगत को जिलाने वाला कहा गया है, उसे पय पीयूष पूर्ण पानी से भरा प्रीति का प्याला कहा गया है। बादल के प्रवास का भी जिक्र इस कविता में आता है, जिसका निखरा हुआ रूप बादल राग क्रम की तीसरी कविता में सब्यसाची के बिंब में अभिव्यक्त हुआ है। फिर माँ ब्रैकेट में धरती के दुख से द्रवित होकर कूद पड़ने का भी जिक्र है, और उसे हरा वसन पहनाकर कविता का अंत निराला पुनः प्रीति बेल बोने के संकेत में ही करते हैं। पृष्ठ संख्या 260। इस तरह भाषा और शब्द संयोजन के धरातल पर निराला इस कविता में स्नेही या मैथिली शरण गुप्त के निकट भले ही लगते हों, संवेदनात्मक सजगता के रूप में वह परिपक्व दिखाई देते हैं। उनकी समझ पक चुकी है और वे वर्षा चित्रण के बारे में अपना संवेदनात्मक निर्णय ले चुके हैं। फिर तो इसके आगे परिमल से लेकर सांध्य काकली तक सारे संग्रहों में सुख, समृद्धि, उल्लास, आनंद और जीवन शक्ति के आवाहन के रूप में ये वर्षा प्रार्थनाएं अप्रतिहित फैली हुई हैं, बल्कि समय बीतने के साथ उत्तरोत्तर इनकी संख्या बढ़ती गई है। अंतिम संग्रह सांध्य काकली की एक तिहाई कविताएं तो सिर्फ वर्षा ऋतु से संबंधित हैं, और सिर्फ संख्या ही नहीं, गुणात्मक दृष्टि से भी उनकी श्रेष्ठता दर्शनीय है। जैसे वृद्धावस्था में बार बार वर्षा ऋतु के चित्रों का लौटना अनुभूत आनंद से कवि को भर देता है। वह बार बार बादलों के आकाश में छाने का, मंडराने का जिक्र करते नहीं थकता। कभी वह मंडराते हैं, कभी गहराते हैं, कभी बरसते हैं और कभी गूंजते हैं अतीत की अनगूंज की तरह। फिर बादलों के छाने से संतोष नहीं होता कवि को, वह अपनी शब्दावली में व्याकुलता से ढूंढता है कोई और शब्द, कोई और शब्द ध्वनि, कोई और शब्द संगीत, जिससे वह अपने मन की प्रफुल्लता और असीम शांत उत्साह को अभिव्यक्ति दे सके। फिर वह छाए और छाए पर उतर आता है। गगन मेघ छाए नए नयन नए, प्राण धन के श्याम घन ए, ताप जल शीतल प्रवण ए, पुण्य के शुभ वस्त्र वर्ण ए, हृदय द्वार गए। यही नहीं, वह जूही की गंध हवा में भर जाने की बार बार चर्चा करता है। कहीं कृष्ण मेघ की मालती खिल जाती है, उपवन में चमेली के फूल भर आते हैं, बेले में पुनः कलियां आती हैं और आकाश आकाश में बादलों का मंद स्वर गूंजने लगता है। शब्द नहीं मिलते, उल्लास और पवित्रता की उसी अनुभूति को बार बार व्यक्त करने के लिए वह अकथनीय है। उसे एक बार एक ही शब्दावली में एक ही तरह की भाषिक संरचना में व्यक्त कर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। वह पावन, समृद्ध, उल्लसित अनुभूति बार बार लबालब भर आती है। कभी उसे अभिव्यक्त करके रित जाना चाहता है, वह जितना ही कहता है ना कहे जाने, ना कह पाने की व्याकुलता उतनी ही बढ़ती जाती है। धीरे धीरे अंततः वह अर्थ से सिर्फ ध्वनि के अमूर्त प्रसंगों पर उतर आता है। पृष्ठ संख्या 261। सहज रिमझिम बाद रिन रिन अनवसादन रे, उसे यह रिमझिम और रिन रिन भी चैन नहीं लेने देते। अनंत शांत उल्लास उसे बार बार आंदोलित करता है। लबालब चारों तरफ भरा हुआ जल, रंगारंग बादल, गहराती हरितिमा और गूंजता हुआ मंद्र गर्जन उसे बार बार इन अमूर्ततम ध्वनि खेलों तक ले जाते हैं। वारी वन वन वारी, वन वारी वन वारी, वारी जब विपुल वारी, पुलवारी कुलवारी द्रुमलता तुलवारी कुल कली कुलवारी आकुल मुकुलवारी बिहग संकुलवारी। इस कविता का सीधा साधा अर्थ कुछ भी नहीं है। खींच तान कर अर्थ बैठाया अवश्य जा सकता है, लेकिन अर्थ निराला का साध्य नहीं है। साध्य तो केवल उल्लास और सुख की अभिव्यक्ति है। द्रुमलता कुलकली बिहग या मुकुल ये शब्द उतने नहीं रह गए हैं जितने ध्वनि रचना की अमूर्त स्वर आरोह। इस विचार से कोई असहमत हो सकता है और खींच कर एक अर्थ निकाल कर सामने रख सकता है, या ठीक वैसे ही होगा जैसे ताक कमसिन वारी वाली कविता का अर्थ निकालने के लिए जोड़ तोड़ करना। कुछ लोगों ने इसे या इस तरह की रचनाओं को निराला के असंतुलित मस्तिष्क से भी जोड़ने की चेष्टा की है। इसकी संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इस ध्वनि संग्रह और उसके अमूर्त संगीत को मात्र विक्षिप्त मानस की बड़बड़ाहट कहकर टालना उचित नहीं लगता, बल्कि निराला के संपूर्ण काव्य का मेरे दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर इन कविताओं की एक संगति स्पष्ट उभर कर सामने आ जाती है।